हाँ, जिनको मरे पूरे 6 महीने हो गए हैं, आज ही के दिन लगभग इसी समय उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए और क्या निकली बाहर? लाश। डॉक्टरों का तो कहना था कि हार्ट फेल हो गया, पहले से खराबी थी इसीलिए ऐसा हुआ। अब भगवान जाने हार्ट फेल हुआ कि कोई कह रहा था बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी जिससे होश ही ना आया। पिंटू तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू था, किसी तरह मान ही नहीं रहा था। उसका कहना भी ठीक ही था कि हार्ट पहले से चेक का ही नहीं कर लिया, अगर हार्ट कमजोर था तो ऑपरेशन के थिएटर में काहे ले गए, पहले हार्ट का इलाज हो जाता, नहीं तो ना होता ऑपरेशन, उठ बैठ ना पाते, यही तो होता, जिंदा तो रहते। सबने उसको पकड़ लिया, नहीं तो मारे बिना ना छोड़ता वो डॉक्टर को। फंड से की जाने कहां कहां से तो पैसा निकाल कर फीस भरी बेचारे ने, पूरे 10,000 गिना कर रख लिए, तब ऑपरेशन थिएटर में ले गए उन्हें। डॉक्टर का जल्लाद है सब। मुझे तो लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया था, पता नहीं कितने छींटे पानी के मारे लोगों ने, कोई इंजेक्शन भी दिया शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखा सब लोग पिंटू को पकड़े खड़े समझा रहे हैं कि जिसको जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी से का फायदा, मौत पर किसी का बस आज तक चला है कि आज ही चलेगा। नहीं आए तो हम इतना जानते हैं कि जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है मौत उसको वहीं घसीट के ले जाती है। इनकी मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। अब कहावत भी तो कही गई है ना, वो का हिले लोजी बहाने मौत, नहीं तो ना मरा वो विज्ञापन देखते टीवी पे और ना ही वो स्टूल लेकर बाथरूम में टंकी ठीक करने जाते। जहां इतने दिनों से बह रही थी ससुरी, कुछ दिन और बहती रहती, लेकिन मेरे भाग्य में तो रंडापा भोगना लिखा था। जिंदा थे तो अक्सर कहते रहते थे कि तुमसे पहले मैं ही मर जाऊंगा, और मैं कहती अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुमका मुझे राण बनाना चाहते हो, ऐसे पूरे कर्म किए होंगे तभी तुम्हारी मिट्टी देखूंगी, नहीं तो औरत की मर्जात इसी में है कि सधवा मरे, मांग में सिंदूर और पांव में बिछुए पहन कर चिता पर चढ़े, नहीं तो औरत की जिंदगी अकारत है। और वो कहते ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल औरतों के मरने से आदमी को ज्यादा कष्ट होता है, आदमी के मरने से औरत को उतना नहीं होता है। अब तुमको काहे की चिंता, तुम्हारा जवान का माऊ बेटा है, बहू है, पोता है, तुमको हमारी कमी नहीं खलेगी, तुम मर जाओगी तो मुझे कौन पूछेगा। अब पिंटू को ही देख लो, एको बात मानता है मेरी, इतनी बार कहा वक्त से घर आ जाया करो, घर की जिम्मेदारी समझो, सुनता है भला मेरी, मैं समझाती। अरे तुमको का करना है, तुम अपनी 2 जून की रोटी खाओ, चीटी चिड़िया चुगाओ, अरे सुबह शाम बाहर टहलने निकल जाया करो, पोता बड़ा हो रहा है उसे बिठा कर का खागा, ABCD पढ़ाओ। बस एक ही चिंता उनको खाए जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता, इस कान से सुनता उस कान से निकाल देता। कितनी साध से उन्होंने मकान बनवाया था, जरा सा प्लास्टर उखड़ता था तो उनके कलेजे में हूक उठती थी। अरे मैं समझाती रहती थी कि मकान में टूट फूट तो लगी ही रहती है, वो कहते टूट फूट लगी रहती है ये तो सही है, लेकिन टूट फूट ठीक भी तो होनी चाहिए। अरे पिंटू को नहीं चाहिए कि इस तरफ ध्यान दे, चलो खुद से ना ध्यान दे, मेरे कहने से तो ध्यान दे, मेरी उम्र हो गई है, अब इतना काम नहीं होता मुझसे, जल्दी थक जाता हूं मैं। मैं कहती अरे नहीं होता तो चुप्पे बैठो, जैसा हो रहा है वैसा होने दो। अब पिंटू अभी जवान है, का समझे दुनियादारी, और जवानी में कोई किसी चीज की परवाह करता है? तुम करते थे कि तुम्हारा बेटा करेगा, अरे उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के बीच बैठकर गपशप लड़ाता होगा जैसे तुम लड़ाते थे, रात रात भर ताश पत्ता खेलते थे कि नहीं? लेकिन उनको तो यही चिंता खाए जा रही थी कि अभी से पिंटू का ये हाल है तो आगे भगवान ही मालिक है। पता नहीं क्यों जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे माया मोह भी बढ़ रहा था, स्वभाव भी चिड़चिड़ा होता जा रहा था। कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी में ऐसा होता है, उस बीमारी में आदमी को गुस्सा ज्यादा आता है। जो भी हो, ऊपर से तो कभी कुछ पता ही नहीं कि शक्कर की बीमारी है, नहीं तो इलाज हो जाता। पिंटू को भी अफसोस है कि ना शक्कर की बीमारी का पता चला पहले से, और ना ही दिल की कमजोरी के बारे में किसी भी डॉक्टर ने कुछ बताया। कि छोटी मोटी बीमारी में डॉक्टर को दिखाने तो जाते ही थे, उसको बताना चाहिए था कि नहीं, ससुरे पहले पता चल जाता तो जमकर इलाज हो जाता। मुझको तो लगता है कि महंगाई खा गई उनको, हड्डी टूटना तो बहाना था, नहीं तो 65-66 की कोई उम्र होती है भला आजकल। अरे रिटायर हुए थे तो कितने खुश थे, दफ्तर की विदाई पार्टी में यारों दोस्तों ने ढेर सारे प्रेजेंट दिए थे, रिक्शे पर लते फते घर लौटे तो बोले चलो हो गई नौकरी, अब कुछ आराम करूंगा जिंदगी में। कितने लोग घर तक पहुंचाने आए थे, सभी कह रहे थे कि आज तक किसी को रिटायरमेंट पर इतने प्रेजेंट नहीं मिले जितने इनको मिले थे। दूसरे ही दिन बाजार जाकर 1 किलो बादाम लाए, और उका कहते हैं गांधी आश्रम वाली शहद की शीशी, और मुझसे बोले लो रोज शाम को 4-6 बादाम भिगो दिया करना, सुबह घिस कर शहद के साथ खाऊंगा। अरे मौसमी फल तो हर वक्त घर में बने रहते, हफ्ते में 2 बार तो खुद जाकर गोश्त लाते, और मुझसे कहते खूब गला कर पकाना, मसाला जरा कम डालना, मसाला नुकसान करता है ना। मैं बनाकर देती तो कितने शौक से बैठकर खाते, कहते जवानी तो झींक दे गई थी, बुढ़ापे में आराम करूंगा। भगवान की दुआ से इतनी पेंशन मिल जाती थी कि किसी बात की कमी नहीं पड़ेगी। पिंटू एक बार ना भी दे एको पैसा घर में तो भी राम जी की कृपा से कमी ना होगी, लेकिन का बताएं कमी होने लगे। धीरे धीरे चीजों के दाम डेढ़ दूने तिगुने हो गए। घर का खर्च जो 2500-3000 में पहले चल जाता था, अब 5000 भी कम पड़ने लगे। सो एक एक करके खर्चे कम किए जाने लगे। पहले बादाम बंद हुआ, फिर गोश्त, और अब फल। सुबह जहाँ दही जलेबी ब्रेड मक्खन और अंडे का नाश्ता होता था, वहाँ बेचारे नमकीन पूरी खाने लगे। बाद में तो नाश्ता ही करना छोड़ दिया उन्होंने। मैंने कहा भी कि पूरी पराठा अच्छा ना लगता हो तो तुम्हारे लिए अलग से अंडा या मक्खन मंगा दिया करें, बस बिगड़ उठे। बोले बच्चा हूँ क्या मैं, और तुम का समझते हो इस मारे नाश्ता नहीं करता मैं। अरे इस बूढ़े शरीर को और चाहिए क्या, कुछ भी खा लूं मैं, इस शरीर में कुछ लगने वाला नहीं बल्कि नुकसान ही करेगा। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में जितना कम खाए उतना ही ठीक। एक बार तो कपड़ों के बारे में भी मैंने कहा कि ना हो तो खद्दर भंडार से ही 2-4 कुर्ते पजामे ले आओ अपने लिए, का अच्छा लगता है तहमत पहने बाहर बैठे रहते हो, अब इतना टोटा भी नहीं है पैसों का कि नंगे उघारे बैठे रहो। अरे मेरी बात सुनकर एक क्षण चुप रहे, तब बोले अब इस तन को और का चाहिए, कफन चाहिए सो कोई ना कोई डाल ही देगा, क्यों ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालते हो। मैंने कहा तो बोले मैं और अब ज्यादा ना जीऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या 1 साल, बताओ ये भी कोई बात हुई। सो वो तो चले गए, मगर इधर पिंटू को पता नहीं कहा होता जा रहा है, उनके मरते ही जैसे उसके चेहरे की रौनक ही खत्म हो गई। जब देखो तब गुमसुम बना बैठा रहता है, दफ्तर से सीधे घर आ जाएगा, और कमरे में कुर्सी पर बैठा अखबार की न जाने कौन कोई किताब लिए पढ़ता रहेगा। कितनी बार मैंने उसको कहा कि शाम को थोड़ा घूम फिर आया करो, कहीं दोस्तों के यहाँ चले जाया करो, लेकिन क्या मजाल के दफ्तर के अलावा कहीं चला जाए। हाँ दूसरे तीसरे दिन थैला लटका कर सब्जी जरूर लेने जाता है, या फिर सुबह सुबह दूध लेने चला जाता है। पहले घोसी घर पर दे जाता था तो उसे मना कर दिया, कहने लगा अरे तुम इसमें पानी मिलाते हो, बात सही भी थी, अब दूध दूध लगता है, एक अंगुल मोटी मलाई पड़ती है, मिल का पिसा आटा लाना भी बंद कर दिया है, महीने 2 महीने पर बाजार से खुद ही गेहूँ ले आता है। मैं बीन पर छोड़ देती हूँ, पहली बार उसने देखा तो बहू को बिगड़ने लगा कि चौधराइन बनी बैठी हो और मम्मी गेहूँ बना रही है। बहू तुरंत भाग कर आई बेचारी, लेकिन मैंने ही मना कर दिया, इसी बहाने थोड़ा हाथ पांव चला लिया करूंगी, नहीं तो गठिया ने तो पकड़ ही रखा है ससुरी। पिछले कुछ दिनों से एक और बात देख रही हूँ,
रात में ना सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि सारे बंद ही है कि नहीं। और बाथरूम की वो मरी टंकी तो पहले ही बदल गई, रसोई नल में भी नई टोटी लगा दी है। कहीं कोई फालतू बत्ती चल रही होगी या पंखा चल रहा होगा, तो लगा बहू पर बिगड़ने कि पैसा का पेड़ में लगता है। और जो बेकार में बिजली फूंकी जा रही है, सब उन्हीं के लक्षण आते जा रहे हैं। अरे फिर कल परसों की ही तो बात है, रात में कुछ खटपट हुई तो मेरी आँख खुल गई। देखती काहूँ कि दरवाजों के कुंडे से टिकनी टटोल रहा है कि ठीक से बंद है कि नहीं। अरे मैंने देखा तो मेरे मन अंदर से कांप उठा भाई, कि वो तो ये सब बुढ़ापे में करते थे, इसको क्या होता जा रहा है। हे भगवान, दया करना, रक्षा करना हमारी पिंटू की।
तो दोस्तों, देखा आपने, जो पिता अपने बेटे को हर काम के लिए टोकता रहता था और बेटा उन सब कामों को करना समय की बर्बादी समझता था, अंत में पिता की मृत्यु के बाद कितनी आसानी से उन्हीं सब बातों का अनुसरण करने लगता है जो उसके पिता करते थे। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।